बोला पुस्तक चौधरी लेक्चर नंबर 7।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सौवसामूलं उवसमिदसयलदोषे उवसंतकसाय वीयरायन्ते उवसामहे पणमिउ कसाय उवसामनोच्छम।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चौदहवीं पुस्तक में अभी हमारा वही चारित्रमों की उपशामना नाम का अर्थाधिकार चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 34 पर आ गए। अब कल से हमारा नया गाथा, जो चौथी गाथा का अर्थ यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, तो कौन से करण विच्छिन्न होते हैं और कौन से करण अविच्छिन्न होते हैं। यहाँ करण का अर्थ है कर्मों की अवस्था। तो यहाँ कौन कौन से करण है, तो 8 प्रकार के यहाँ करण बताए। तो कौन कौन से है यहाँ वाला, वो सत्ता वाला नहीं लिया है करण, क्योंकि उसकी तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो 8 आप बता रहे
हैं। हाँ,
पहले में पहले अप्रशस्त उपशामना,
अप्रशस्त उपशामना,
विदति
करण,
निकासना,
बंधकरण,
बंधकरण
नहीं, अपकर्षण उत्कर्षण,
उदीर्ण
बंध
उदीर्ण
अपकर्षण,
अपकर्षण उत्कर्षण और संक्रमण। फिर से बोलो तेज। बंध उदीर्ण अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण, ये 8 करण है। इनमें से 10 करण होते हैं। सत्ता को यहाँ नहीं लिया है,
सत्ता
और हृदय को नहीं लिया है, सत्ता हृदय को नहीं लिया है। तो कौन से यहाँ पर आकर कौन कौन से करणों की विच्छित्ति होती है, वो बात यहाँ बता रहे हैं, और कौन सी नहीं होती। तो यहाँ इन 8 करणों की यहाँ चर्चा चलेगी, इनमें से बात चलेगी। ना ना ना, यहाँ यहाँ तो उपशम श्रेणी की बात चल रही
है। ये अंतरकरण
अधिवृत्तिकरण के पहले समय से अप्रशस्त उपशम, निकासित और निकासना, ये करण रुक जाते, बंद हो जाते, स्थिति होती है। यानी पहले उस रूप से परमाणु रहते थे, अब उस रूप से नहीं रहेंगे, ये बात।
यहाँ पे बात अंतरकरण के पश्चात की होगी कि नौवे गुणस्थान के पहले,
नौवे गुणस्थान के पहले समय में कहाँ कौन से विच्छिन्न होते उसकी बात है ना। तो पहले तो ये 3 थे, हो रहे थे, यहाँ पर आके वो विच्छिन्न हो गए। हाँ देखो 33 पेज पर है। इन करणों में से सूत्र, यानी आप इन्हें कर्मों की उपशामना करने वाले कषाय के उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी का पूरा अपना प्रकरण चल रहा है। तो उपशम श्रेणी में कौन से कर्म ने कौन से करण विच्छिन्न हो जाते हैं और कौन से अविच्छिन्न होते हैं। हाँ, वो अनिवृत्ति कर्म के पहले समय में रुक जाते हैं। यहाँ लिखा है ना 33 पर, 17 हम देखेंगे केवल। इन करणों में से अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में सभी कर्मों के अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण, निकासनाकरण विच्छिन्न हो जाते हैं। इसके आगे वो नहीं रहेंगे, यानी सभी परमाणुओं का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण यथा योग्य होगा। पहले कुछ परमाणु अपनी अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, वहीं से रहते थे। उसका कारण क्या है? तो यह अनिवृत्तिकरण के जो परिणाम है वो परिणामों में इतनी विशुद्धि है कि उसके कारण ये बातें अभी नहीं होगी। ये तो सभी कर्मों में लागू हुआ। अब बाकी कर्म किस किस में होते हैं उसकी बात नीचे के सूत्र में, आयु कर्म और वेदनीय कर्म को छोड़कर वहां शेष पांचों ही कर्म होते हैं। पहले तीन कर्म नहीं होते और आगे के कर्म होते हैं। कौन से होते हैं? बंध, उदीरणा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण। तो इसमें से कहते हैं कि आयु और वेदनीय को छोड़कर शेष पांचों ही कर्म होते हैं, यानी जो अन्य छह मूल प्रकृतियां हैं उनमें बंधन भी है। बंध है ना वहां पर, आयु का बंध का सवाल नहीं है अभी। उदीरणा है, आप कहेंगे वेदनीय में भी है ना बंधन, उसमें कौन कौन से होते हैं वो कहेंगे। अपकर्षण, उत्कर्ष और संक्रमण पांचों ही कर्म होते हैं क्योंकि उनका अभी विच्छेद नहीं हुआ, ये हमने सूत्र में पढ़ा था। अब 34 पृष्ठ पर आना, यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र, उससे वहां से शुरू करेंगे। मंजू बेन मिला 34 पृष्ठ, अभी नया सूत्र वहां पढ़ेंगे। आउगस ओवट्ठा करणम अस्थि शेषाणी सत्त करणानी नस्थि। आयु की और वेदनी की बात अलग से बता रहे, उसमें कौन है कौन से नहीं है, इनको छोड़ो तो बाकी के पांच करण चल रहे आठ में। कौन से नहीं हो रहे? अप्रशस्त सूक्ष्म, निदत्ति, निकाचिन, जो पहले हो रहे थे अपूर्व करण तक वो अभी नहीं हो रहे, परंतु अभी बंधन हो रहा है, उदीर्णा हो रही है, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हो रहे हैं। अब आयु कर्म में कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते उसकी बात बता रहे हैं कि आयु कर्म का अपवर्तना करण है, शेष सात करण नहीं है, यानी अपकर्षण है। अपकर्षण है क्योंकि अभी जिसका उदय चल रहा है उसका तो अपकर्षण वहां तो होगा ही, थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते रहते हैं। आयु कर्म की तो अपवर्तना एक ही यहाँ संभव है, शेष सात करण यहाँ संभव नहीं है। जैसे अभी कौन से आयु का कहाँ क्या होता है उसकी बात बता रहे, नरकायु का बंधन करण और उत्कर्षणाकरण मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होते हैं, उपरिम गुणस्थानों में नहीं होते। तेजल आपको इसका कारण मालूम है? हाँ बताओ, क्योंकि आप जब ही कर्मकांड में आती थी जब हमारी बंध विच्छित चल रही थी। मिथ्या तो गुणस्थान में ही बनता है और वहीं पर उसकी बंध की विच्छित्ति है, आगे बंध नहीं होता, और उत्कर्षण करने के लिए बंध की अपेक्षा होती है। जिस कर्म का बंध हो रहा है उसी कर्म के पुराने सत्ता में पड़े परमाणु को बंध के साथ उत्कर्षण हो सकते हैं, इसलिए नरकायु का बंध और उत्कर्षण मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही होता है, उपरिम गुणस्थान में नहीं होता। अपवर्तन, उदय, उदीर्णा, उपशम, निकाचना और निधत्तीकरण जहाँ तक सत्व है ऐसे असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक होते हैं। नरकायु का सत्व कहाँ तक है? दूसरे गुणस्थान तक। आप क्या कहते हैं? आपको मालूम नहीं है, सत्व इन्हें सत्ता में पड़ा रहे ना। मंजू बेन आप सुन रहे हैं ना शाम की बातें, क्या अभी सत्व का प्रकरण नहीं आया? नरकायु का सत्व कौन से गुणस्थान तक है? पांचवे। नरकायु का सत्व, हम नरक गति नहीं पूछ रहे, नरकायु आयु। तो नरकायु का किसके होगा? जो नारकी जीवों के नरकायु का उदय होगा या जिसने मनुष्य तिरंचे ने नरकायु बांधी उनके होगा। तो जिसने मनुष्यायु, तिरंचायु या नरकायु बांधी है उसके अनुव्रत और महाव्रत नहीं होते, ऐसा हमने नियम देखा, यानी चौथे तक, यानी जिसने बांधी, हाँ श्रेणी का जिसने बांधी है वो तो चौथे गुणस्थान तक तो जाता है मनुष्य तिरंचे, या स्वयं नारकी चौथे गुणस्थान तक आता है कि नहीं? जिसको नरकायु वर्धमान यानी वर्तमान की चल रही है, भुज्यमान जिसको कहेंगे। आपने ये पढ़ा नहीं इसलिए आपको नहीं पूछा। नारकी स्वयं नरकायु का उदय वाले हैं, उनकी सत्ता में भी नरकायु पड़ी है, तो उनके चौथा गुणस्थान हो सकता है। अब जिस मनुष्य तीरंचे ने पहले नरकायु बांध ली, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसके भी बद्धायु वहाँ नरकायु रूप से पड़ी है, सत्ता में तो है उसकी, परंतु वो जो पांचवें में नहीं जा सकता। तो नरकायु की सत्ता कहाँ तक है, तो चौथे तक है। यही बात बताते हैं कि जब तक उसकी सत्ता है, यानी सत्व का अर्थ होता है सत्ता, बंदी हुई पड़ी हो या स्वयं नारकी जीव हो, उसकी वर्तमान की भुज्यमान हो, तो चौथे गुणस्थान तक है, असंयत सम्य दृष्टि तक है। तो जब तक सत्ता है तब तक उसमें क्या क्या होता है, देखो फिर से देखेंगे उसको। अपवर्तन, अपवर्तन है अपकर्षण करके परमाणु थोड़े थोड़े नीचे आना, पूरे निषेक तो नीचे नहीं आ रहे उसके। फिर उदय, चौथे तक उदय का अर्थ क्या है, नारकी जीव जिनको नरकायु का उदय है उनको पहला भी गुणस्थान हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो उदय भी है, जहाँ उदय होता है वहाँ उदीर्णा, अपकर्षण तो सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपकर्षण होने वाले परमाणु से कुछ परमाणु उदयावली में जुड़ जाते हैं, उसका उदय होता है, तो उसको उदीर्णा कहेंगे। उपशम, परंतु ये उदीर्णा किसकी होती, उदय और उदीर्णा भुज्यमान आई। अभी श्रेणिक राजा ने उस अवस्था में मनुष्य पर्याय में नरकायु बांधी थी, पर वहां मनुष्ययु का उदय चलता था, उस समय नरकायु का उदय उदीर्णा नहीं थी। उदय उदीर्णा किसकी होती है, भुज्यमान आई। तो नारकी जीवों के लिए उदय और उदीर्णा भी होगी, परंतु अपवर्तन जो बद्धायु जो पड़ी है उसमें भी हो सकती है उसका, यानी वैसे तो हमने घातायु को कहते हैं ना, घट भी सकती है, हाँ होती है, और ऊपर स्वर्गों में भी घटती है। तो अपवर्तन, उदय, उदीर्णा, उपशम, ये उपशम यानी वो प्रशस्त उपशम वाला उपशम नहीं, जो उदय में नहीं है परमाणु वो सारे कैसे उदय रूप नहीं है, बस उसको उपशम कहेंगे। कर्णोक्षम नहीं, अकर्णोक्षम, बर जिसको
हम अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम तो उदय नहीं है और अप्रशस्त उपशम होगा वो,
अप्रशस्त उपशम उसको भी कहते कि दूसरे रूप से उदय में आना, और यहाँ तो वो सत्ता में पड़ा है बस, वही उसका उपशम है। उसका उदय चालू है, पर सभी परमाणुओं का चल रहा है, तो कुछ परमाणु ऊपर भी पड़े हैं, हाँ तो उनको हम कहेंगे उसका उपशम है। फिर निकाचना, निकाचना में भी ऐसा लेना, कुछ परमाणु अपकर्षण होकर नीचे आते हैं, कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपने वो वही रहेंगे, आयु के अंतिम निषेक में वैसे कुछ परमाणु वहीं के वहीं रहेंगे, तो उसको कहेंगे वो निकाचना जो कुछ है। और निधत्तीकरण, वैसे तो इनमें तो संक्रमण होता ही नहीं है आयु कर्म में, मनुष्य आयु टर्न होकर नरकायु बन जाए ऐसा नहीं होता, तो चौथे तक है। अपवर्तन, उदय, उदीर्णा, उपशम, निकाचना, ये नरकायु में लागू कर रहे हैं, क्योंकि नरकायु का उदय चौथे तक ही, इसका संक्रमण करण होता ही नहीं, आयु में संक्रमण करण है ही नहीं। यहाँ सत्व और उदय का कथन प्रसंग से आ गया है, इसलिए असंबद्ध नहीं है, क्योंकि हमने उदय करण और सत्व करण को नहीं लिया था, आठ ही करणों की चर्चा की थी, परंतु यहाँ बताने के लिए उसका कथन आ गया। अब तिर्यंचायु के बारे में हम सोचेंगे, तिर्यंचायु का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है, बंध विच्छे के दूसरे में है, तो तिर्यंचायु का बंधन और उत्कर्षण करण, करण नाम दिया ना अभी हमने इसको, सांसाधन गुणस्थान तक होता है, इसकी संक्रमणा होती ही नहीं, क्योंकि आयु का संक्रमण होता ही नहीं है, किसी भी आयु की संक्रमणा नहीं होती। और शेष पांच करणों तथा सत्व उदय का संयता संयत गुणस्थान में विच्छेद हो जाता है, क्योंकि उसके आगे तिर्यंचायु का असत्व होने से वे करण संभव नहीं है, सत्ता ही नहीं है तो उसकी अवस्थाएं बनने का कोई सवाल नहीं है। तो तिर्यंचायु का उदय उदीर्णा पांचवें गुणस्थान तक है, वहां पर सत्ता है ना उसकी, जब तक सत्ता है तो उसमें वो अपवर्तन उदय उदीर्णा उपशम निकाचना निधतिकरण बनेंगे। अब मनुष्यायु की बात, मनुष्यायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण असंयत समय दृष्टि गुणस्थान तक संभव है। ये किसके हो गए, चौथे गुणस्थान वाले के। हाँ नितिन भाई, चार गतियों में से कौन से चौथे गुणस्थान वाले मनुष्यायु का बंधन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, कौन से गति वाले जीव चौथे गुणस्थान में रहते हुए मनुष्यायु का बंधन करेंगे। हाँ, आप कहेंगे देवर, वैखरी क्यों क्यों याद कर रहे हैं वो तो देवर नाकी। तिर्यंच समय दृष्टि, समय दृष्टि देवायु का बंद करेंगे। मनुष्य समय दृष्टि
देवायु,
वो भी देवायु का बंद करेंगे। अब रहे कौन, नारकी समय दृष्टि तिर्यंचायु का बंद नहीं करेंगे, मनुष्यायु का करेंगे। और देव समय दृष्टि वो भी मनुष्यायु का करेंगे। इसलिए चौथे गुणस्थान तक बंधन है, कहा यहाँ लिखा ना, अभी तक कहा ना संयत समय दृष्टि गुणस्थान तक, परंतु जहाँ बंधन ही नहीं होता ऐसा तीसरा गुणस्थान को छोड़ देना, यानी पहले दूसरे और चौथे में देना। किसी भी आयु का बंध तीसरे में होता ही नहीं। जहाँ बंधन नहीं हुआ उत्कर्षण भी नहीं होगा। तो मनुष्यायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण असंयत समय दृष्टि गुणस्थान तक संभव है। उदीर्णा प्रमत्त गुणस्थान तक होती है। मेरा सवाल है, उदय कितने कौन से गुणस्थान तक है मंजू बहन? हाँ, चौदहवें तक, बहुत बहुत अच्छा। और उदीर्णा छठे तक। और कोई दूसरा कर्म मालूम है जिसकी उदीर्णा छठे तक होती? वेदनी। उदय तो है परंतु उदीर्णा भी नहीं होगी, ऊपर से कुछ परमाणु उदयावली में नहीं जुड़ेंगे, वो कहाँ तक है, छठे गुणस्थान तक। ऐसा ही बिल्कुल, यानी वस्तु स्वभाव है, उसमें क्यों क्या ऐसा कुछ निकारण नहीं लगता। तो मनुष्यायु की उदीर्णा प्रमत्त गुणस्थान तक होती है। आयु में कहाँ क्या क्या है, क्योंकि अभी हम उपशम श्रेणी की बात करें ना, वो तो मनुष्यायु की बात है। अब इसमें मनुष्यायु का बंधन और उत्कर्षण चौथे तक था, वो भी जो बांध रहे उसके होगा। दूसरी बात, संक्रमण होता ही नहीं है। उदीर्णा कहाँ तक संभव है? छठे तक संभव है। अपकर्षण करण संयोग केवली गुणस्थान तक होता है। अपकर्षण यानी नीचे आना परंतु उदयावली में नहीं आना, क्योंकि उदयावली में आने को उदीर्णा कहते थे, वो उदीर्णा नहीं हो रहे, पर सामान्य अपकर्षण ऊपर के निषेकों में, जो कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आते रहते हैं। उदय और सत्व अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। उपशमनाकरण निकाचनाकरण और निधत्तीकरण अपूर्वकरण गुणस्थान के अंतिम समय तक होते हैं, इसकी संक्रमणा नहीं होती। फिर हम जो मनुष्यायु की बात करते हैं, बंधन और उत्कर्षण कहाँ तक है? उत्कर्षण चौथे तक है, तो तब तक ही उत्कर्षण होगा। सामान्य से गुणस्थानों में कौन से गति वाले कर रहे उसकी चर्चा छोड़ दो, तो बंधन और उत्कर्षण, मनुष्यायु का बंधन और उत्कर्षण चौथे तक है। मनुष्यायु की उदीर्णा छठवें तक, अभी अभी पढ़ा ना हमने। आठ कर्णों में से हमको लेना है,
आपने बताया ना पहले,
आप ही नहीं तो बताया था। हाँ। तो बंधन और उत्कर्षण चौथे तक, उदीर्णा छठवें तक, क्रम से जाएंगे। उपशम यानी कौन सा वाला, वो अप्रशस्त उपशम को निकाचना निकाच निरतिपना अपूर्वकरण का, उसके बाद
अपकर्षण
अपकर्षण संयोगी
तक, सहयोगी
उदय और सत्व अयोगी के अंत तक
संक्रमण है ही नहीं,
संक्रमण है ही नहीं। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था ना, आयु कर्म का अपवर्तनाकरण है, शेष सात करण नहीं है। तो शेष सात करण अभी भी नहीं है, बंधन करण और उत्कर्षण करण चौथे में गए। अभी मनुष्य के लिए तो पहले ही छूट चुके थे, मनुष्यों के लिए मनुष्य आयु का बंधन कब तक है? मनुष्य के लिए मनुष्य का बंधन, मनुष्य आयु का बंधन, मनुष्य जीव मनुष्यायु का बंध दूसरे में छह प्रकृतियों की बंध विचित्य होती है ना मनुष्यों के लिए, मार्गणा की अपेक्षा 41 के साथ वो और छह हमने वहां घटित की थी, मनुष्यायु मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी उदारिका उदारिका अंगोपांग और वज्र नाराज वज्र शुभ नाराज दूसरे में।
दूसरे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंध चालू हो सकता है,
विच्छित का अर्थ क्या है?
नहीं बराबर है पर इतने छोटे नहीं, मैंने क्यों पूछा क्योंकि इसका काल बहुत छोटा है, उसके पीछे अंतर्भूत तक वो विश्राम करके उसका मरण होगा।
बस जाने दो ना उसको, मिथ्या तो में जाते हुए बंद कर दे तो उसको।
अच्छा चालू करेगा, सॉरी मैं भूल गया,
ये ऊपर छावली का तो अंतर्मुख हो सकता है उसके पहले भी, फिर भी सासादन में जो आयु का बंध शुरू किया है वो मिथ्यात्व में चालू रहेगा।
नहीं मैं मरण की अपेक्षा,
सासादन में आने के पहले आयु का बंध शुरू करेगा कि नहीं करेगा?
सासादन में आने के पहले नहीं करेगा, प्रथम ऑप्शन समझे,
प्रथम ऑप्शन के काल में नहीं करता,
इसीलिए मैंने पूछा है। नहीं मैं मरण की अपेक्षा सोच रहा था, जिसका मरण होने वाला है सासादन में
तो उसने ऑलरेडी वो बद्धा ही होना चाहिए। सासादन में जो मरता है वो बद्धा ही होना चाहिए, ख्याल में है ना? क्योंकि उपशम समय समय कब से नहीं आयु का बंध, आयु का बंध कब से रुक गया था?
हाँ प्रायोगिक लब्धि
में बंधापसरण हुए थे ना, 34 बंधापसरण
वहाँ पे नहीं रुक जाता है,
शुरू में ही चार आयु का बंध एक क्रम से रुक गया था, यानी वहां से लेकर फिर करण लब्धि हुई, उपशम समय तो हुआ, फिर नीचे आया, नीचे नहीं सासाधन में आया, तो उसने बंध कब किया था आयु का? तो पहले
एक इंद्रिय का भी बंध किया होगा ना,
जो जहाँ ये था योग्य जो जाना है। पहले जिसने मनुष्य आयु का बंध किया है, हाँ समय तो प्राप्त किया, सासाधन में आया, सासाधन में मरने वाला तीनों गति में जा सकता है। मनुष्य आयु उसने पहले बांध दी थी, सासाधन के साथ आता है ना, प्रथम ऑप्शन में तो मरता ही नहीं है ना।
हाँ
हाँ मनुष्य आयु किसने बांधी? समय तो प्राप्त किया, मर सकता है जब क्षय करेगा तब, क्योंकि क्षय उपशम में तो कोई भी नहीं मरता जिसने आयु का बंध किया हो या नहीं किया हो। सासाधन में मर
ऐसे ले सकते थे कि जो जिसका मनुष्य का मरण सासाधन में होगा वो कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे ले सकते?
क्यों नहीं होगा,
हो सकता है ना,
सासाधन में मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है?
मिथ्या तो में एक ही गुण
कौन से भाव में जा सकता है? देव नारद देव तीरंत
नरक में नहीं जाता,
नरक में नहीं जाता, देव मनुष्य या तीरंत होता है ना, सासाधन में मरकर यहाँ जन्म ले सकता है, मनुष्य भी मनुष्य में जन्म ले सकता है।
नहीं हमने देखा था ना कि कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाला मनुष्य मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होने वाला,
सासाधन में लेने में उसको क्या हर्ज है? सासाधन के साथ तो जन्म ले सकता है,
सवाल ही नहीं,
सासाधन में जन्म तो ले सकता है ना? रोनत्रिक में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता।
हाँ ऊपर भी जा सकता है।
पहले त्रिभाग, प्रथम त्रिभाग में आयु का बंध किया, कौन से आयु, एक बार आयु का बंध होने के बाद आयु फिक्स हो गई, अभी उसका मरण का समय निश्चित है, यानी उसका कदलीघात नहीं होगा। अच्छा बद्धायु कम हो सकती है कि नहीं आपका प्रश्न है? हाँ हो सकती है, जब अगर दूसरी बार आयु का बंध करके वो बढ़ाई तो हाँ जितनी आयु बंधेगी मैक्सिमम उसी उसमें आयु कही जाएगी। बढ़ तो सकती है, ये जरूरी नहीं कि दूसरी बार वो कम बंधी है उतनी बंधेगी, जितनी जो बांधेगी, कम बांधता है तो निषेक तो पड़े है उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर अधिक बांधता है तो उसमें चली जाएगी। हमने तो धातायुष्क की बात सुनी है इसलिए वो ऐसा लगता है ना। हाँ पर आठ बार आयु बनती है तो उसमें अधिक भी बांध सकता है। हाँ हाँ नीचे के हम स्टोरी सुनते हैं ना, नीचे की आयु बांधी थी और ऊपर का देव हुआ, अभी वो देवी रो रही थी, वो तो प्रथमान युग में ऐसी कथाएं आती हैं। वो नहीं कौवे का मांस छोड़ा, वो उसने पहले ऐसे कुछ आती स्टोरी आती है। चलो ठीक है, ये तो करना नहीं होते नियम, तो करना नहीं में ही पढ़ने चाहिए हो ना। यहाँ क्या हो रहा है, यानी आयु में तो
ये नीचे से दूसरी लाइन बात
देखो, आयु में उत्कर्षणाकरण बताया है तो उत्कर्षणाकरण कब पॉसिबल है?
नया बंद
यानी अंतर्मुहूर्त तक अंतर, हाँ तो उसका अर्थ क्या है?
हाँ बंद हो जाता है, हाँ यहाँ पे ही घटित हो गया,
यह पहले समय पर बंद है, नीचे के नीचे को में से ऊपर चले जाएंगे, उसको भी उत्कर्षण तो कहेंगे।
पहले मतलब भावनात्मक मुख्य दृष्टि में बांधी, फिर समय दर्शन प्राप्त किया,
हाँ हो सकता है ऐसा लगता है, अभी देखेंगे क्योंकि उत्कर्षणाकरण तो बताया है सब जगह उन्होंने, तिरंजायु का बंधन उत्कर्षण, मनुष्यायु का बंधन उत्कर्षण।
उत्कर्षण तो जो नीचे की स्थिति में निषेक निषेक में जो परमाणु पड़े वो
ऊपर जा सकते हैं क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक लगातार बंद है, तो
ऊपर जा सकते हैं,
ये जरूरी नहीं कि दूसरी बार उसको आयु बांधनी चाहिए, यानी वो भी वहाँ पॉसिबिलिटी है। अब देवायु की बात पढ़ी कि नहीं हमने?
नहीं
नहीं। हाँ देवायु के बंधन करण और उत्कर्षण करण अप्रमत्त गुणस्थान तक होते हैं, सातवें में देवायु के बंध की विच्छित्ति है ना, वहां तक देवायु बनती है। उदय और उदीर्णाकरण असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक होते हैं, देवायु की बात चल रही है, जैसे नरकायु का उदय चौथे तक है
देवायु,
तो इसे देवायु का उदय, जहां उदय है वही उदीर्णा भी होगी, असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक होते हैं। अपकर्षण करण और सत्व उपशांत कषाय गुणस्थान तक होते हैं, बद्धायु जो है जिसने देवायु बांधी है उसका सत्व कहाँ तक पड़ा रहेगा, वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो सत्व है वहां तक, कहाँ तक? ग्यारहवें गुणस्थान तक, और वहां तक अपकर्षण भी बताया है, यानी कुछ परमाणु नीचे के दिशकों में भी आ मिलेंगे, अपकर्षण उदय नहीं कहे इसलिए उदीर्णा नहीं कहा उसको, सामान्य अपकर्षण हो रहा है वहां पर। तथा उपशामनाकरण, निकाचनाकरण और निधत्तीकरण, ये उपशामनाकरण के बाद एक कॉमा लगाओ, अपूर्वकरण गुणस्थान के अंतिम समय तक होते हैं,
थी, हमने जो शाम को जो उदय की विच्छुति देखी, अरे सत्ता की विच्छुति, वहाँ पे हमने सातवें गुण स्थान तक की देखा ना, क्योंकि वहाँ पे एक शपक श्रेणी की बात हुई।
आप ही उसका उत्तर बता रहे।
नहीं, यहाँ पे ग्यारहवें गुण स्थान तक लिया इसी बिल्ली को,
वहाँ सातवें गुण स्थान तक कैसे होगी सत्ता शपक श्रेणी चढ़ने वाले के?
नहीं,
सत्ता ही नहीं होगी,
नहीं होगी
सत्ता ही नहीं होगी तीन आयुओं की। आप कुछ घोटाला कर रहे हैं।
नहीं, सातवें गुण स्थान तक सत्ता तो हो सकती है
देवायु की, एक बार बंदी है तो कैसे वो?
नहीं नहीं, बद्धायुष तो होगी ना,
बद्धायुष को होगा तो क्षपक श्रेणी कैसे चढ़ेगा? और बद्धायुष को होगा तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो ग्यारहवें गुण स्थान तक सत्ता कहलाएगी। आप कुछ घोटाला हो रहा है।
मेरा कुछ मैं भूल गया।
जो बद्धायु है उसका शपक श्रेणी चढ़ने का सवाल ही नहीं।
नहीं, हमने सत्ता की विच्छुति में चौथे गुण स्थान में नरकायु की देखी, पांचवे में तिर्यकायु की देखी, और देवायु की हम लोग ने सत्ता की विच्छुति
कहाँ देखी?
मुझे याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने पूछा।
देखी नहीं।
नहीं, देव द्विज की हमने तेरहवें गुण स्थान में देखी, पर देवायु की हमने वहाँ पे कहाँ पे देखी?
देवद्विज की तेरहवें में नहीं, चौदहवें में देखी।
हाँ, चौदहवें के उपांत समय में। हाँ। तो
देवायु का सवाल ही नहीं था सत्ता की विच्छु करने का। अभी ग्यारहवें गुण स्थान में
सत्ता का चाहती है,
ग्यारहवें गुण स्थान तक सत्ता है।
नहीं, वो आपने दिया है वो मेरे सामने।
देखो देखो, जो बद्धायु है वो कहाँ तक जाएगा? ग्यारहवें गुण स्थान तक जाएगा, यानी उसकी सत्ता की विच्छुति यानी उसका क्षय करने का कोई कारण ही नहीं है वहाँ पर। ये जो हम आयु की बात चल रही है, शपक श्रेणी कौन चढ़ेगा? जिसने आयु का बंधन नहीं किया है
मनुष्य आयु की सत्ता वाला ही चढ़ेगा।
तो उसके भुज्यमान तो मनुष्य आयु है, अन्य तीन आयुओं की सत्ता ही नहीं है, तभी तो वो जाएगा शपक श्रेणी चढ़ेगा। अभी जो देवायु जिसने बंधी है वो पांचवें गुणस्थान और ऊपर जा सकता है तो मनुष्य, परंतु उसने देवायु बांधी है। तिर्यंच भी पांचवें में कौन जा सकता है? या तो उसने आयु बंधी नहीं हो वो जा सकेगा, या देवायु बांधी हो जाएगा। तो तिर्यंचों के पांचवें गुणस्थान तक देवायु का चक्र है, और मनुष्यों के कौन से गुणस्थान तक है? ग्यारहवें तक है। एक क्षय का जो हमने वर्णन देखा है उसमें देवायु का नाम ही कहाँ था?
क्षय का नहीं है,
क्षय करने का कारण ही नहीं है। जिसने
है।
नहीं बांधी है उसके वो अभाव रूप होती है, असत्व रूप होती है। कर्मकांड में देवायु की चर्चा आई नहीं थी, वो तो क्षपक वाला जो है वो बिना तीन आयु की सत्ता वाला जाता
नहीं
है।
होती।
देखो, अभी हम आयु की बात चल रही थी, देवायु की अपकर्षण और सत्व उपशांत कषाय गुण स्थान तक होते हैं, तथा उपशामना निकाचन और निदतीकरण अपूर्वकरण गुणस्थान के अंतिम समय तक होते, इसकी संक्रमणा नहीं होती। इसलिए ये जो सूत्र का अर्थ अभी बता रहे, सूत्र का अर्थ घटित करने के लिए उन्होंने चारों आयु की बात बताई। आयु मूल प्रकृति का अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करने के प्रथम समय में एक अपवर्तनाकरण ही है। ये जो सत्व की बात है वो यहाँ कंसीडर ही नहीं कि आठ कर्णों में उसका नाम ही नहीं लिया था। दस कर्ण कहते तो सत्व का नाम लेते, तो यहाँ सत्व को हमने गौण रखा है। आठ कर्णों में से कौन से कर्ण है उसकी चर्चा चल रही है, तो कहते मात्र अपवर्तना करण चल रहा, शेष करण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि सत्व और उदय आठों कर्णों में अविवक्षित है, आठ कर्णों में सत्व और उदय की विवक्षा छोड़ दी है। जब दस कर्ण कहेंगे तो उसको अलग से बताएंगे। ये जाहिर है जिसका सत्व है उसी में ये बातें घटित होगी, इसलिए सत्व की बात नहीं, और उदय जहाँ यथायोग्य जहाँ होता है उसकी बात है। उदय की बात उदीर्णा से सिद्ध ही होती है, उदीर्णा उसी की होगी जिसका उदय
है,
और बाकी कर्ण उसी की होगी जिसका सत्व है, इसलिए उन दो को नहीं लिया है। यानी यहाँ बात चल रही थी कि अनिवृत्तिकरण के पहले समय में अप्रशस्त उपशम निधत्ता निधत्ति निकाचना ये तीन करण रुक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
बाकी कौन से?
बाकी के कर्मों में अन्य पांच करण चलते रहते हैं। आयु और वेदनी की बात अलग छोड़ दी उन्होंने। आयु में कौन सा चलेगा? मात्र अपवर्तना करण ने अपकर्षण करण चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। आप क्या कह रहे हैं? हाँ,
ये कदली घात होता है वो भी अपवर्तना करण है।
कदली घात की बात यहाँ नहीं है।
नहीं, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ।
हाँ,
वो अपवर्तना करण कहलाएगा? नहीं,
कदली घात में तो पूरे ऊपर से घात होकर उसका
क्योंकि
अपवर्तना होती है पूरी।
यहाँ पे चारों आयु में ये क्या बताया कि अपूर्व करण तक ये उपशांत निधति और निकाचित है, तो कदली घात होता है उसमें ये नहीं होता है। कदली घात होता है तो उसका निधति और निकाचित तरह निकल जाता है।
हाँ, सारे मीशे की नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ना पूरा,
तो वहाँ पे तो
अपवर्तना पूर्ण हो जाती है, पूरे नीचे आ जाते हैं और निकल जाते हैं।
नहीं, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि यह बताया ना तथा उपशमनाकरण निकाचनाकरण निधति।
हाँ, उसको कहते हैं कदली घास रूप,
तो वो निधति निकाचित तरह नहीं,
सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सत्व हृदय आठों कर्णों में अविवक्षित है। अब वेदनीय में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। वेदनीय से बंधनाकरणम, उवठनाकरणम, उवठनाकरणम, संक्रमणाकरणम, एदानी चत्तारी करणानी अस्थि, शेषानी चत्तारी करणानी नस्थि। वेदनीय कर्म के बंधनकरण, अपवर्तनाकरण, उद्वर्तनाकरण और संक्रमणाकरण, ये चार करण होते हैं, शेष चार करण नहीं होते। तीन तो यहाँ रुक गए और एक उदीर्णा की विच्छित्ति हमने देखी थी, छठे में होती है, छठे तक ही उदीर्णा है, इसलिए उदीर्णाकरण नहीं होता। अन्य कर्मों के पांच पांच होते हैं, तीन रुकते हैं, पांच होते हैं, तो इनके उन तीन के साथ उदीर्णा भी नहीं हो रही है, अन्य चार हो रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह जैसे साता वेदनी के बंधन करण और अपकर्षण करण संयोग केवली के अंतिम समय तक होते हैं, उत्कर्षण करण सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय तक होता है। नितिन में ऐसा क्यों कहा? उत्कर्षण दसवें के अंत तक क्यों हो रहा है? आपको मालूम है मंजू? ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले को भी बंद है। साता विज्ञ की बात चल रही है तो। हाँ बोलो भाई, आप बता दो, दसवें तक ही उत्कर्षण क्यों है? उत्कर्षण क्यों है? बंधन तो तेरहवे तक है और ऑप्शनल कहाँ है? ऑप्शनल तो छठे तक है। असाता का बंधन तो छठे तक था।
मैं बता?
हाँ बताओ बताओ।
स्थिति और अनुवाद नहीं बनते।
स्थिति बंधेगी तो ही उत्कर्षण कब संभव है। उत्कर्षण किसको कहते हैं? उदयावली के निषेकों के ऊपर जो निषेक है उसमें से कुछ परमाणु बंधने के साथ ऊपर चले जाते हैं। ऊपर यानी कहा, जितना बंध होगा ऊपर का उतने चले जाएंगे, तो ऊपर जाने के लिए ऊपर का बंध तो होना चाहिए, तो दसवें के अंत तक इसका बंध कौन सा? स्थिति बंध है दसवें के अंत तक। क्यों? क्योंकि वहां तक कषाय, कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बनता है। ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में बंद है, परंतु वो एक समय का है। एरिया पता चलो, एरिया पद बंद हो, इसके दोनों नाम है उसके, तो उसमें तो कोई स्थिति अधिक बांधने की सवाल ही नहीं, स्थिति ही नहीं बनती है उसमें, तो पुराने परमाणु ऊपर जाने का कहाँ सवाल है? जहाँ स्थिति का बंद हो रहा है तो कम स्थिति वाले परमाणु अधिक स्थिति में चले जाते हैं, यानी उसमें नया बंध के साथ ऊपर चले जाते हैं ना। हमने देखा था, हमेशा ही उत्कर्षण के लिए नए बंध की अपेक्षा होती है। तो जो और उसका किसका होता है जो उदयावली में नहीं है उसके ऊपर का। मान लेते हैं चार समय हमने उदयावली के बताए और ऊपर सत्ता में बहुत सारे परमाणु पड़े हैं। अब यहाँ वर्तमान समय में नया बंद होगा, आबादा छोड़कर यहाँ बंद हुआ, तो उदयावली के ऊपर के परमाणु यहाँ से जा सकते हैं, सर्वत्र जा सकते हैं इसके परमाणु, तो इसको कहेंगे उत्कर्षण। जब उदयावली में एंटर हुए हैं उसका तो उत्कर्षण नहीं होता। अब 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में क्या होता है, एक ही समय का बंध है ना, उसमें आबादा है ना स्थिति है, तो ये परमाणु कहाँ जाएंगे ऊपर, बंधने वाले के साथ ऊपर चले जाते हैं, जिसका बंध अधिक हो वहां इसके जूट जाते हैं। अभी इसके जो बराबरी के है या इसके बराबरी के है उसका उत्कर्षण तो नहीं होगा, जिससे अधिक स्थिति बंधेगी तो उत्कर्षण होगा। तो 10वें तक स्थिति का बंध है तो कुछ परमाणुओं का उत्कर्षण भी है। यहाँ लिखा ना, देखो फिर से देखते हैं। उत्कर्षणकरण सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय तक होता है, उसका कारण वहां तक स्थिति बंद होता है। अश्विन भाई कितना होगा स्थिति बंद यहाँ पर, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में?
पृथक तो वर्ष नहीं, उपशम श्रेणी की बात है ना,
24
मुहूर्त का डबल हो गया।
शपक श्रेणी में 12 मुहूर्त है, नाम गोत्र का 8 मुहूर्त है, तो यहाँ डबल होगा उसको। चौबीस मुहूर्त होगा। उदीर पढ़ो आगे, तीसरी लाइन, उदीर्णाकरण वेदनीय का उदीर्णाकरण और संक्रमण प्रमत्त संयत गुणस्थान तक होता है। ये उदीर्णा का तो पता है हमें, अभी अभी हमने बता दिया था कि उदीर्णा जो है वो छठे तक ही होती है। संक्रमण क्यों छठे तक होता है? एक तो असाता का साता में हुआ क्योंकि बंधने वाले में संक्रमित होता है, बराबर। वहां साता का असाता रूप हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि वहां असाता का भी बंध है,
छठे तक
जिसका बंध है उसमें संक्रमण होगा। और वेदिनी की दो ही प्रकृति है, साता और असाता। आगे बंध है, साता का बंध है, परंतु असाता का बंध नहीं, तो साता का संक्रमण होने का सवाल नहीं है। तो संक्रमणा प्रमत्त संयत गुणस्थान तक होता है संक्रमणाकरण। तो हम ये संक्रमण के लिए जो हमेशा असाता का साता रूप कहते हैं,
वो तो अप्रशस्त उपशम में
जाएगा सत्ता वाले,
वो तो अप्रशस्त उपशम हो जाएगा ना,
जिसका बंधन नहीं है। हाँ। ऐसे असाता वेदनीय का उसका संक्रमण नहीं होगा,
वही रूप उदय में आएगा ना साता।
नहीं नहीं, असाता का साता रूप होता है कि नहीं होता, ये प्रश्न है। वो तो अपना उसका अपना अनुभव घर जाएगा, परंतु असाता साता रूप होगे कि नहीं होगे, उदय की बात नहीं चल रही, संक्रमण की बात।
साता का तो तेल
हरिंद भाई, श्रेणी में असाता का साता रूप संक्रमण है कि नहीं है?
होगा ना,
यहाँ लिखा है संक्रमण प्रमत्त संयत गुणस्थान तक होता है। वही तो,
यहाँ साता रूप होगा ना, संक्रमण
का साता वेदनी के लिए ये घटित कर रहे मात्र, साता वेदनी के लिए संक्रमण वहाँ तक है।
कर्म के लिए लिखा है तो इसके
नहीं, साता वेदनी के बंधन करण अपकर्षण करण लिखा है।
अच्छा,
असाता वेदनी का संक्रमण चलेगा, क्योंकि असाता जो नहीं बंधने वाली है
वो
उसका संक्रमण होकर बंधने वाली में साता में चली जाएगी। चलो ये सातावेदिनी की बात हम पढ़ रहे हैं, ये सारे कर्णों की चर्चा सातावेदिनी के बारे में चल रही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बंधन और अपकर्षण संयोग केवली के अंतिम समय तक, उत्कर्षण सूक्ष्म सांब्रा के अंतिम समय में क्योंकि वहां तक स्थिति बंद है इसलिए, उदीर्णा और संक्रमणा प्रमत्त संयोग तक है क्योंकि साता का असाता रूप संक्रमण जब असाता का बंद है वहां तक ही होगा। उदीर्णा के लिए तो नियम है आयु और वेदिनी की उदीर्णा छठे तक, उपशामना निकाचना निधत्ति अपूर्व कर्म के अंतिम समय में वो सभी कर्मों में घटित होता है उन्होंने बताया था। अब उदय और सत्व साता वेदिनी का कहाँ तक होगा, चौदहवें तक, अयोग केवली के अंतिम समय तक होते हैं। हमने देखा ना किसी के साता का उदय है किसी के असाता का है तो अंतिम समय तक, ये बात ख्याल में आई। बंधन और अपकर्षण कहाँ तक है, साता का बंधन सहयोगी तक, आगे उत्कर्षण देख के नहीं इधर क्यों, वहां तक स्थिति बंद है नया बंधने वाले के साथ वो चले जाएगा ऊपर। उदीर्णा और संक्रमण छठे तक, उदीर्ण की बात चल रही है और उपशामना निधत्ति निकासित वो तो आठवें के अंत तक, उदय और सत्व चौदहवें के अंत तक, ये सातावेदिनी की बात हो गई। अब आगे असाता की बात, ये आसान है ना आज का जरा विषय, हाँ सबकी चल रही है। असाता वेदिनी के बंधन करण हमें मालूम है, असाता वेदिनी का बंध कहाँ तक है, छठे तक, तो जहाँ बंध है वहाँ उत्कर्षण भी होगा, तो बंधन करण उत्कर्षण करण और उदीर्णा करण, क्योंकि वेदिनी की साता हो या असाता हो उदीर्णा छठे तक है, तो उदीर्णा करण भी प्रमत्त संयुक्त गुण स्थान तक होते हैं। संक्रमणाकरण सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय तक, अभी हमने जो देखी ना बंध नहीं है फिर भी इसका संक्रमण हो रहा है साता में। अपकर्षणाकरण संयोग केवली गुण स्थान तक होता है क्योंकि आगे अपकर्षण रुक जाता है, किसी भी कर्म का अपकर्षण नहीं होता। उपशामनाकरण निकाचना और निधत्तीकरण अपूर्व कर्म के अंतिम समय तक होते हैं। उदय और सत्व अयोगी केवली के अंतिम समय तक होते हैं, किसी के साता का है किसी के असाता का है तो उदय और सत्व अयोग केवली के अंतिम समय तक, इसलिए वेदनीय मूल प्रकृति के, ये मूल प्रकृति की बात यहाँ पर, इस स्थान पर बंधनकरण अपवर्तनाकरण उद्वर्तनाकरण और संक्रमकरण ये चार ही करण होते हैं। बंधन और उद्वर्तना हम साता वेदनी की समझेंगे फिर भी वो मूल प्रकृति में तो घटित होगी होगी। संक्रमण करण किस में होगा,
साता का
असाता का होगा संक्रमण, असाता में नहीं, जिस किसी में होता है मूल प्रकृति में तो लागू होगा, परंतु हम इसमें से समझेंगे बंधन जो है यहाँ पर साता का है। अपवर्तनाकरण किसका है, साता असाता दोनों का होगा। उद्वर्तनाकरण
खाली साता का,
साता का जिसका बंद है उसका होगा, और संक्रमण करण असाता का होगा, शेष नहीं, इसका सम्यक सम्यक हुआ है, सम्यक प्रकार से विचार किया, इस प्रकार इसका कथन करके अब यह क्रम यहां से ऊपर कितने स्थान तक जाता है ऐसी आशंका होने पर इस सूत्र को कहते। पहले क्या कहा था उन्होंने, अपूर्व यानी अनिवृत्तिकरण के पहले समय में तीन करण की विच्छित्ति होती है और बाकी कर्मों में पांच करण रहते हैं, बाकी कर्मों में से आयु को और वेदनियों को गौण कर दिया, वहां किसके कितने होते हैं वो बात उन्होंने बताई। आयु में तो बंधन नहीं है, तो अन्य भी जो कुछ नहीं है उसको बता दिया। अब आगे का सूत्र कहेंगे। यहाँ तक बात ख्याल में आई ना कि कोई प्रश्न है तो पूछना। देखो सूत्र, फिर केवल सूत्र सूत्र देखो। 33 पेज पर के सभी कर्मों के ये तीन करण विच्छिन्न हो जाते हैं। कौन से? अप्रशस्त उपशम, निदत्तीकरण और निकाचनाकरण, ये तीन करण उपशमित हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं, उपशमित नहीं, विच्छिन्न हो जाते
हैं।
अब कहते हैं आयु कर्म और वेदनीय कर्म को छोड़कर अन्य जो छह मूल प्रकृतियां हैं, कौन सी छह रहेगी बोलो? छह प्रकृतियां कौन सी? आयु और वेदनी को छोड़कर छह प्रकृतियों के नाम बताने हैं। हाँ बोलो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन, अंतराय, नाम और गुण। ये छह मूल प्रकृतियों में पांच करण होते हैं, तीन नहीं होते, पांच होते हैं। अब ये दो छोड़ी थी उनमें क्या होता है? तो आयु में अपवर्तनाकरण है, अन्य कुछ नहीं है। और वेदनीय में चार है, चार नहीं है, तो बंधन है, अपवर्तना है, उद्वर्तना है और संक्रमण है। वो तीन विच्छित्ति वाले वो नहीं होती और उदीर्णा वाली वो नहीं होती। अब उसके आगे का सूत्र अब पढ़ेंगे। 36 पृष्ठ पर मूल पयड़ियों पड़ुच्छ पड़ुच्छ ने उसकी अपेक्षा एस कमो ताव जाव चरिम समय बादर सांप्रायोक्ति। मूल प्रकृतियों की अपेक्षा यह क्रम, क्योंकि पांच करण जो उसके चल रहे हैं। कौन से पांच करण चल रहे हैं नितिन भाई? उपशमना तो विच्छित्ति हो गई, बंद, तो कहते हैं मूल प्रकृतियों की अपेक्षा यह क्रम, ये क्र कैसे लिखते हैं? बादर सांप्राय के अंतिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ चूर्णी सूत्र में मूल प्रकृति पद का निर्देश इस गाथा के पूर्वार्ध के मूल प्रकृति संबंधी विषय को सूचित करता है। बादर सांप्राय का अर्थ होता है नौवा गुण स्थान, क्योंकि दसवें का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय, यानी कषाय को सूक्ष्म कर दिया है। और नवे गुण स्थान में कषाय स्थूल है, यानी उसका अनुभाग ज्यादा है, इसलिए उसको बादर सांप्राय कहते हैं। पूछना ऐसा कोई नया शब्द आता है ना, हम रोज बोलते तो हमने बहुत बार बता चुके हम। तो बादर सांप्राय के यानी नवे गुण स्थान के अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के अंतिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ चूर्णी सूत्र में मूल प्रकृति पद का निर्देश, पद यानी शब्द वर्ड, उसका निर्देश यानी कथन इस गाथा के पूर्वार्ध के, गाथा के दो हाफ करेंगे ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, तो ऊपर की लाइन उसको पूर्वार्ध कहेंगे, मूल प्रकृति संबंधी विषय को सूचित करता है। इसलिए मूल प्रकृति की विवक्षा में यह अनंतर पूर्व कहा गया। अनंतर पूर्व ने अभी इमीडिएटली प्रायर अभी अभी जो कहा था वो अनंतर पूर्व कहा गया। कर्णों के विच्छेद और अविच्छेद का क्रम, जिन प्रकृतियों में जो कर्ण विच्छेद रूप हुए हैं और जो नहीं हुए हैं उनका क्रम, अनिवृत्ति बादर सांप्राय के, यहाँ अनिवृत्ति शब्द डाला, अनिवृत्ति बादर सांप्राय के अंतिम समय तक जानना चाहिए, क्योंकि इस अंतर में यानी यहाँ से लेकर नवे के अंत तक, ये बात नवे के पहले समय से शुरू हुई थी और नवे के अंत तक, इस अंतर में यानी इस इतने काल तक प्रकृत प्ररूपणा का, जो हम प्ररूपणा कर रहे उसका नानापना नहीं उपलब्ध होता, यानी उसमें कोई डिफरेंस यहाँ नहीं पाया जाता। नानापना यानी भिन्नपना, यानी उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। यही क्रम नवे के अंतिम समय तक चलेगा। दसवें में क्या डिफरेंस होगा, अभी उन्होंने तो बताया नहीं, हम सोचेंगे मोहिनी का बंद होगा कि नहीं होगा। पहले तो मोहिनी में बंधन करण उत्कर्षण करण सब घटित किए, अब मोहिनी में बंद रुकेगा, तो ये बातें बताएंगे दसवें में क्या हो रहा है। जब आगे कुछ बातें बताते हैं तो हम सोचना चालू करें तभी से, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, दसवें में क्या बताने जाने वाले। तो हम पढ़ेंगे अभी गाथा, पहले पढ़ेंगे सुहुम सूत्र, गाथा के ऊपर सूत्र। सुहुम सांप्रायस्य मोहिनीस्य दो कर्णानि ओवट्टनाकरणम उदीर्णाकरण च शेषाणम कम्माणम तानि चैव कर्णानि। उदीर्णाकरणम चाहिए ना, न के ऊपर बिंदी चाहिए, जरा पीछे देख लीजिए परिशिष्ट में 36 नंबर का सूत्र नहीं, पेज 36। पर इसका नंबर 5 मूल पहलू पहलू जैसे कम होता है जरम समान रहते सुम सांप्राय सुमन से दो करना नहीं होता करण मुझे उदीर्णा करणम च, करणम लिखा है ना, न के ऊपर बिंदी है, फिर से पढ़ती सुम सांप्रायस्य मोहिनीस्य दो कर्णानि ओवट्टनाकरणम उदीर्णाकरणम च शेषाणम कम्माणि तानि चैव कर्णानि। यानी मोहिनी में भी दो ही कर्ण बाकी रहते, बंधन उत्कर्षण वगैरह रुक गए ना, पांच में से भी उसके हाँ उदय भी नहीं होगा, उसका
संक्रमण तो है नहीं।
हाँ उदय तो है सूक्ष्म रूप से, संक्रमण नहीं रहे। मूल प्रकृतियों की अपेक्षा यह क्रम नहीं, नहीं नीचे का सूत्र पढ़ना है। सूक्ष्म सांप्राय जीव के मिलन मोहिनी के दो करण होते हैं, अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण, तथा शेष कर्मों के पूर्वोक्त वे ही करण होते हैं। यहाँ सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में मोहिनी का बंध नहीं होता, इसीलिए उसका यहाँ उत्कर्षण और संक्रमण नहीं होता ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि बंध निमित्त कुंती बंध के अभाव में प्रवृत्ति होने में विरोध है, इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का, बंध निमित्त उनकी मंजूबे ना बताएंगे, बंध के अभाव में प्रवृत्ति होने में विरोध है। हाँ इस वाक्य का अर्थ बंध निमित्त उनकी, उनकी यानी किसकी, हाँ कौन से दो, हाँ ये उत्कर्षण और संक्रमण, उत्कर्षण होने के लिए नए बंध की अपेक्षा है, संक्रमण भी बंधने वाले में संक्रमित होते हैं। यहाँ मोहिनी की कोई प्रकृति बंध नहीं रही है तो पुरानी कोई भी प्रकृति उसमें संक्रमित नहीं है। अब उसका अपवाद है मिथ्या तो में से जो अन्य दो बनती है उसकी बात यहाँ नहीं लेना, चारित्र मोहिनी की यहाँ थ्रू आउट बात चल रही है। हाँ फिर भी मिथ्या तो में से जो समय मिथ्या तो समय प्रकृति रूप जो कुछ वहाँ
वो उसकी बात ही नहीं,
हाँ, उसकी बात नहीं है, चारित्र मोहिनी की 21 की ही बात चल रही है। यानी उसका उत्कर्षण भी नहीं और संक्रमण भी नहीं है, क्योंकि बंध निमित्तक उनकी, बंध निमित्तक उनकी यानी उत्कर्षण और संक्रमण जो बंध निमित्तक है उनकी, बंध के अभाव में प्रवृत्ति होने में विरोध है, प्रवृत्ति नहीं होती यानी उत्कर्षण और संक्रमण नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो बंध के कारण होते हैं। बंध के कारण होने वाले ऐसे जो उत्कर्षण और संक्रमण है उनका बंध का अभाव होने के कारण उन दो पदों का भी यहाँ अभाव
है। संक्रमण भी ले सकते हैं, बंध नहीं है तो
लेना ही है ना,
क्योंकि असंक्रामक तो वो पहले ही हो गया संक्रमण के काल में, लोक का असंक्रामक तो
हाँ
वो पहले ही हो गया था,
वो नहीं दोनों फिर भी यहाँ वो असंक्रामक है कि नहीं है, वहाँ नवे गुणस्थान की बात है, वहाँ अलग अलग उसके भेद करके बात नहीं थी, यहाँ दसवें में तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ना यहाँ है ही नहीं, बंद ही नहीं है। वहाँ बंद था कि नहीं लोग का अंतिम समय तक बंद
था।
अतः अप चाहिए, प रह गया, अपकर्षणा करें। अतः अपकर्षणाकरण और उदीर्णाकरण ये दो ही करण यहाँ मोहिनी के होते हैं यह सिद्ध हुआ। कब तक हो गए?
एक अवली काल,
एक अवली और एक समय बाकी है तब। उदयावली का एक ऊपर का निषेक नीचे आएगा उसको उदीर्णा कहेंगे, उसके बाद उदीर्णा वगैरह कुछ नहीं होगी। एक एक अवली के निषेक सूक्ष्म सांप्राय में एक क्रम से उदय में आके फिर जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि अपकर्षणा और उदीर्णा ये दो ही करण यहाँ मोहिनी के होते हैं यह सिद्ध हुआ, परंतु शेष कर्मों के, अभी छह में से मोहिनी को हटा दिया, शेष कर्म कितने रहे?
ज्ञानावरण,
दर्शनावरण,
नाम कर्म और गोत्र,
अंतराय,
नाम और
गोत्र। इनमें पहले कहे गए वे ही करण जानना चाहिए, उनके कथन में कोई भेद नहीं है। तो उन कर्मों के कितने करण चल रहे हैं? शेष पांच कर्मों के कितने करण चल रहे हैं? पांच, बराबर है, क्योंकि तीन ही करण रुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। उवसंत कसाय वीयरायस, ये उवसंत कसाय वीयराय कौन है? उपशांत कसाय वीतराय। हम मंगलाचरण में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? उनको वीरसेन स्वामी ने नमस्कार किया है। उवसमिद सैल दोसे उवसंत कसाय वीयरायन्ते, यानी जिन्होंने कषायों की उपशमना की है और पूर्ण वितराग हुए हैं। और वो कौन है? क्षीण मोह वाले, उन्होंने कषायों का क्षय करके पूर्ण वितराग हुए। वो भी वितराग छदमस्तक कहेंगे, इनको भी वितराग छदमस्तक कहेंगे, मतलब इन्होंने उपशमित किए, उन्होंने क्षय कर दी, क्षपित कर दी। तो उवसंत कसाय वीयरायस मोहनीयस विन अति किंचवी करणम मोत्तुन दंशन मोनियम, दंशन मोनी को छोड़कर मोनी का कोई भी करण ग्यारहवें वाले को नहीं बाकी रहा। दसवें वाले के दो करण थे, कौन से दो थे? हाँ, अपकर्षण और उदीर्णा दो थे। ग्यारहवें वाले को कुछ नहीं रहे, किंचवी करण मोत्तुन ने एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर? दंशन मोनियम, दंशन मोनिय सदी ओवट्टाकरणम संकणाकरम च अस्थि, यानी उसके अपकर्षण और संक्रमण होता है, यानी मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बनते रहते। अब उसकी बात आगे बढ़ेंगे हम नीचे हिंदी में। उपशांत कषाय वीतराग के दर्शन मोनिय को छोड़कर मोहनीय का कोई भी करण नहीं है, चारित्र मोहिनी में कोई करण बाकी नहीं रहा, इसीलिए उसको कहते सर्वोपशामना या सर्वकरण उपशामना। दर्शन मोहिनी का भी अपवर्तनाकरण और संक्रमणाकरण है, वो करो, ठीक करना है तो करो। अब इसको पढ़ेंगे। उपशांत कषाय वितराग के मोहिनी का कोई भी करण नहीं है, इस प्रकार इस सामान्य वचन से दर्शन मुनि के भी सब करणों का प्रतिषेध प्राप्त होने पर उसका निषेध करने के लिए दर्शन मुनि को छोड़कर यह वचन कहा है। उसमें भी अपकर्षणाकरण और संक्रमणाकरण ये दो ही करण निर्दिष्ट किए गए हैं, क्योंकि उसका उदय नहीं तो उदय ना होने का संवाद नहीं है, बंद नहीं है तो बंद भी नहीं है, उत्कर्षण भी है नहीं है। और जो दर्शन मोनी है अन्यत्र क्या है, बंधने वाले में संक्रमण होता है, ये रूल है सब जगह, परंतु दर्शन मोनी में ऐसा रूल नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार होती है और वो बंधने वाली प्रकृति है ही नहीं, इसलिए वहाँ के संक्रमण के लिए वो बंधने वाले में संक्रमित होता है ये रूल नहीं है। परंतु जब सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में चला जाता है तो वहाँ उद्वेलना होती है मिथ्यात्व में, क्योंकि वो मिथ्यात्व प्रकृति बन रही है, वहाँ उल्टे संक्रमण में तो वो नियम लागू होगा। अब यहाँ बात क्या चल रही है, संक्रमणाकरण है कह रहे हैं, यानी यहाँ भी मिथ्यात्व में से अन्य दो रूप से होने का कार्य चलेगा। तो कहते उसमें भी तीसरी लाइन अपकर्षणाकरण और संक्रमणाकरण ये दो ही करण निर्दिष्ट किए गए हैं, बताए हैं, क्योंकि शेष करणों का अभाव होकर ये दो ही करण यहाँ उसके पाए जाते हैं। शेषाणम कम्माणम पी ओवट्टनाकरणम उदीर्णाकरणम च अस्थि नवरी आउग वेदनीयाणम ओवट्टना चेव। शेष कर्मों के भी अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण है, इतनी विशेषता है कि आयु और वेदनीय कर्म का अपवर्तनाकरण ही है, क्योंकि उसका उदीर्णाकरण छठे में ही रुक गया था। और यहाँ तो हमने सूक्ष्म सांप्राय में क्या देखा था उसके बारे में,
उत्कर्षण नहीं होता,
दसवें तक उसका उद्वर्तना भी था संक्रमण भी था, क्योंकि स्थिति बंद था तो अन्य वेदनीय मूल प्रकृति ऐसे संक्रमण भी था। अब यहाँ क्या हो रहा है, आयु और वेदनीय में अपवर्तनाकरण ही है। यहाँ बंद है कि नहीं है ज्ञानावरण का, हाँ नितिन भाई क्यों नहीं है, किसका है फिर बंद, किसका है ग्यारहवें में बंद किसका है, किसका है मैं पूछ रही हूँ, साता वेदनी का एक का ही, बाकी तो ज्ञानावरण दर्शन अंतराय की बंद विच्छित्ति हो गई दसवें में, इसलिए अन्य प्रकृतियों में अन्य कोई कर्ण नहीं, बंधन है तो उत्कर्षण भी नहीं होगा। तो शेष कर्मों में भी अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण है। उदीर्णाकरण क्यों, क्योंकि उदय चल रहा है ना तो उसकी उदीर्णा भी होगी ज्ञानावरणादि की। इतनी विशेषता है कि आयु और वेदनीय कर्म का अपवर्तनाकरण ही है। शेष ज्ञानावरणादि कर्मों के भी अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण ये दो ही करण होते हैं, क्योंकि शेष करण यहाँ पर संभव नहीं है। यथा उपशांत कषाय में सभी कर्मों का बंध नहीं होता, इसलिए बंध के अभाव में संक्रम भी नहीं होता, क्योंकि वह उसका अविनाभावी है। वह उसका अविनाभावी है ने? संक्रम है वो बंध का अविनाभावी, अविनाभावी है ने?
बंद होगा तो संक्रम होगा,
उसी के प्रेजेंस में होगा, नॉट अदरवाइज पॉसिबल, अविनाभावी, उसके बिना वो नहीं हो सकता। उसका अभाव होने पर यानी बंध का अभाव होने पर उसका सहचारी उत्कर्षणाकरण भी नहीं होता। यानी बंध के अभाव में संक्रमण भी नहीं होगा और उत्कर्षण भी नहीं होगा, इसलिए अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में होने वाले पांच करणों में से तीन करणों की यहाँ विच्छित्ति हो जाने के कारण शेष दो ही करण होते हैं। हमने क्या देखा था, अनिवृत्तिकरण के पहले समय में तीन कर्णों की विच्छित्ति, अभी अन्य कर्मों की आयु वेदनी को छोड़ दो यहाँ, तो कौन से रह गए, वो अप्रत्यक्ष उपशमना निदत्ति निकाषना छोड़ दो, उसकी विच्छित्ति हुई, बाकी पांच रह गए। कौन से बंध है? उदीर्ण है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, संक्रमण है। अब इनमें से बंध, संक्रमण और उत्कर्षण, ये तीन रुक गए यहाँ। ये कहाँ तक है?
दसवें
के अंत तक, क्योंकि तब तक ही बंध है। इसलिए अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में होने वाले पांच करणों में से तीन करणों की यहाँ विच्छित्ति हो जाने के कारण, तीन करण कौन से नष्ट हुए नितिन भाई? बंध जिसके प्रेजेंस में होते हैं, बंधन करण, संक्रमण करण और उत्कर्षण करण, ये तीन का अभाव हो गया। शेष दो ही करण होते हैं, कौन से बचे अभी? अपकर्षण रह गया, उदीर्ण रह गया। इतनी विशेषता है कि आयु कर्म और वेदनीय कर्म संबंधी उदीर्णाकरण पहले विच्छिन्न हो जाने के कारण, कहाँ पर विच्छिन्न हुए थे? उदीर्ण की विच्छित्ति छठे में हुई, तो अभी यहाँ क्या रहा उनका? केवल अपकर्षण। यहाँ एक अपवर्तनाकरण ही होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि उन कर्मों का यहाँ प्रकारांतर उपलब्ध नहीं होता। शंका, वेदिनी कर्म का बंधन करण भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और सहयोगी गुणस्थानों में साता वेदिनी के बंध का निषेध नहीं है, इसलिए इसका यहाँ एक अपवर्तनाकरण ही होता है, ऐसा निश्चय करना घटित नहीं होता। कौन सी आवाज आ रही थी? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन गुणस्थानों में स्थितिबंध का अभाव होने से साता वेदनीय का बंध अबंध के समान विवक्षित है। ये कभी कभी उसको बंध में नहीं भी गिनेंगे तो वो उसकी अपेक्षा समझना चाहिए। कहा भी है, शुष्क दीवाल पर गिरी हुई मुठ भर धूले के समान वितरागों के साता वेदनीय का इरियापथ कर्म अनंतर समय में ही निवृत्त हो जाता है, यानी वो एक समय के लिए ही है वहाँ पर, बस आने का समय, नेक्स्ट समय नो मोर, यानी है उसी समय, जो है उसी समय, अगर हम विक्षिप्त कहते हैं तो उस अपेक्षा से उसी समय गया कहेंगे
तो नहीं बनता।
और हाँ, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से पर्यार्थिक नहीं में नेक्स्ट समय में गया कहेंगे, द्रव्यार्थिक नहीं में उसी समय नहीं है ऐसा कहेंगे। दशकरणी संग्रह में तो ये दशकरणी संग्रह कोई ग्रंथ का नाम होना चाहिए, है ना? प्रकृति बंध की संभावना की अपेक्षा करके वेदनीय कर्म के वितरा गुणस्थानों में भी बंधन करण और अपवर्तनाकरण, ये दो करण कहे गए हैं, इसलिए कुछ विरुद्ध नहीं है। अपेक्षावश वो कह दिया है और वो अपेक्षा समझते हैं। यहाँ तीन घाती कर्मों के उदीर्णाकरण और अपवर्तनाकरण, क्षीण कषाय गुणस्थान में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक होते हैं, उससे आगे उन दोनों करणों की उपलब्धि नहीं पाई जाती है। यहाँ सभी गुणस्थानों की अपेक्षा बात करनी थी, इसलिए तीन घाती कर्मों का उदय कहाँ तक है? उदय अभी उत्तम श्रेणी में तो 11वें तक ही
कहेंगे,
परंतु वैसे सभी गुणस्थानों की अपेक्षा बात करेंगे तो 12वें के अंत तक है। तो उसमें उदीर्णाकरण और अपवर्तन करण कब होता है? तो लास्ट में जो आवली शेष रहेगी उसके ऊपर एक निषेक बाकी है, तब तक उसमें से उदीर्ण और अपकर्षण कहलाएगा। अब मात्र उदयावली शेष रहेगी, अब कहाँ से कहाँ चला जाएगा, बस कुछ नहीं, तो तब तक उसके उदीर्णाकरण और अपवर्तन करण बताया। उससे आगे उन दोनों करणों की उपलब्धि नहीं पाई जाती। नाम कर्म और गोत्र कर्म के उदीर्णाकरण और अपवर्तनाकरण तथा वेदनीय और आयु कर्म के अपवर्तनाकरण संयोग केवली के अंतिम समय तक होते हैं। ये जो संयोग केवली है वहाँ उदीर्णा की विच्छित्ति वहीं हो जाती है। अब वहाँ नाम और गोत्र का जो उदय रूप वहाँ प्रकृतियाँ हैं उसमें उदय रूप जो है उसमें उदीर्णा भी होती रहेगी, और उदीर्णा है वो भी अपकर्षण का एक प्रकार है, तो सामान्य से भी अपकर्षण वहाँ होता रहता है। और वेदिनी आयु में तो
खाली अपवर्तनाकरण ही
है। हाँ, उदीर्णाकरण तो छठे में रुक गया होने के कारण अपवर्तनाकरण संयोग केवली के अंतिम समय तक है। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध के इसी विवरण से उत्तरार्ध भी गतार्थ हो गया, गतार्थ है उसका अर्थ उसमें आ गया। इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। ये बात ख्याल में आई बात यहाँ पर, कम करणम वसंतम अनुवसंतम च कम करणम ती ऐसा सौवावी गाहा विहासिदा भवदी। कौन करण उपशांत रहता है और कौन करण अनुपशांत रहता है, इस प्रकार यह पूरी गाथा ही विभाषित हो जाती है। वहाँ कौन करण विच्छिन्न हो जाते पूछा था, अब यहाँ कौन उपशांत हो जाते हैं, यानी रुकते हैं कुछ काल के लिए। कौन करण उपशांत रहता है, कौन करण अनुपशांत रहता है, इस प्रकार यह पूरी गाथा ही विभाषित होती है, उसकी विभाषा उसका जो अर्थ है उसका जो स्पष्टीकरण हो जाता है। गाथा के पूर्वार्ध के व्याख्यात होने पर ही, यानी उसका व्याख्यान करने पर ही गाथा का उत्तरार्ध भी व्याख्यात हो जाता है। व्याख्यात होना यानी उसका भी व्याख्यान उसमें आ जाना। इसलिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के साथ यह पूरी गाथा ही व्याख्यात जाननी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि जो भी करण जिस स्थान पर विच्छिन्न हो गए वे वहाँ ही उपशांत हो गए, और जो विच्छिन्न नहीं हुए वे वहाँ अनुपशांत रहे। इस प्रकार पूर्वार्ध के व्याख्यान में ही उत्तरार्ध की गतार्थता देखी जाती है, उसी में उसका अर्थ समाहित हो जाता है। उसको विच्छिन्न होते हैं कहो या उपशांत होते हैं कहो, बात एक ही हो जाती है। उपशम श्रेणी के लिए उसको उपशांत कहेंगे, टपक श्रेणी उसको विच्छिन्न कहेंगे। यहाँ पर भी विच्छिन्न शब्द आता है, उसकी कोई ना नहीं है। अथवा अभी अथवा कह के दूसरी बात करें, मूल और उत्तर प्रकृतियों के साधारण रूप से इस करण के उपशांत होने पर शेष करण क्या उपशांत होते हैं या अनुपशांत शांत नहीं शांत रहते हैं, न अर्थो करना, डबल तक के बदले न अर्थो करना, वो उसको न कर दो वहीं पर, नहीं डॉट नहीं, वो डबल तो नहीं चाहिए। उपशांत कैसे लिखा है वैसे अनुपशांत लिखो। इस प्रकार सन्निकर्ष स्वरूप से, सन्निकर्ष क्या किसको कहना, एक होते
एक
हुए दूसरे का
क्या
स्वरूप है, उसकी प्रेजेंस है कि नहीं है, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। यानी एक के होते हुए दूसरे का वहाँ सद्भाव है कि नहीं है। इस प्रकार सन्निकर्ष स्वरूप से करणों के उपशांत भाव की गवेषणा करने के लिए, गवेषणा करना यानी उसको ढूंढना, खोज करना, यानी एक के होते हुए दूसरा करण वहाँ है कि उपशांत है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है, ढूंढ निकालना है। इसके लिए गाथा का उत्तरार्ध आया है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। और ऐसा होने पर अनंतर उपरिम गाथा में प्ररूपित किए जाने वाले अर्थ के साथ इसके पुनरुक्त पने की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस द्वारा सूचित किए गए अर्थ की वहां काल को विशेषण बनाकर प्ररूपणा करने पर उक्त दोष संभव नहीं रहता। यानी उसी पोजीशन पर क्या है, हाल है, इसकी बात वहाँ बताई जाती है। इसलिए वहाँ विच्छिन्न कहा या अनुपशांत कहा या उपशांत कहा, तो इसमें कोई विरोध तो है ही नहीं है। इस प्रकार तीसरी गाथा को उल्लंघन करके चौथी गाथा के अर्थ का व्याख्यान किया। ये हमने पहले देखा था, पहले दो गाथा के बाद डायरेक्ट उन्होंने चौथी गाथा का अर्थ यहाँ लिया था। अब तीसरी गाथा के पूर्वार्ध का व्याख्यान को हुआ इच्छा करना, व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये बात ख्याल में आई ना? आज तो हमने कर्णों के कहाँ विच्छित्ति होती है, कौन से कर्मों में कौन से कर्ण बाकी रहते हैं, कहाँ जाके कौन कौन से कर्मों में क्या क्या विशेषता होती है, आयु में क्या है, वेद में क्या, उसकी बातें देखी हमने। मिला कहाँ है, सुधारना है। अब हम ऊपर देखेंगे गाथा के आधार से जो सूत्र बनाया है कि चिरम उवसामी यदि संकणम उदीर्णाच केवचिरम की एदम्मी सुत्ते विहासिज्यमाने एदानी चेव अठ कर्णानी उत्तर पयडीनम पुदपुध विहासी यौवाणे। कितने काल तक कौन प्रकृति उपशमाई जाती है तथा संक्रम और उदीर्णा कितने काल तक होते हैं, इस प्रकार इस सूत्र के व्याख्यात होने पर यानी सूत्र का व्याख्यान करने पर उत्तर प्रकृतियों के ये ही आठ करण पृथक पृथक व्याख्यान किए जाने चाहिए। तीसरी गाथा चौथी में बता दिया कौन कहाँ विच्छिन्न होते हैं, उसी के आधार से ये कहते यहाँ आठवीं करण चल रहे। इस तीसरी गाथा के पूर्वार्ध का व्याख्यान करने पर जिस प्रकार चौथी गाथा का आलंबन लेकर मूल प्रकृतियों में इन आठ करणों का अनुसंधान किया, उसी प्रकार यहाँ भी उत्तर प्रकृतियों में से एक एक प्रकृति को विवक्षित करके यानी उसकी अपेक्षा लगा के इन्हीं आठ करणों का पृथक पृथक व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि मूल प्रकृतियों में व्याख्यात आठ करणों का उत्तर प्रकृतियों में काल का आलंबन लेकर व्याख्यान करने के लिए वो व्यय हुआ है। इस गाथा के पूर्वार्ध का अवतार हुआ है यानी कितने काल तक होता है ऐसा पूछा उन्होंने, यह इस सूत्र का भावार्थ है। और इसीलिए उल्लंघन करके तीसरी गाथा के व्याख्यान के समय चौथी गाथा का व्याख्यान किया। अब यह गाथा सूत्र का पूर्वार्ध काल को विशेषण बनाकर उत्तर प्रकृतियों में कर्णों के उपशांत और अनुपशांत अवस्था का प्ररूपण किस प्रकार करता है, इस प्रकार ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए कुछ अवयवार्थ का परामर्श करते हैं। इस भाषा समझ में आ रही है? अवयव है पार्ट, एक एक पार्ट गाथा का लेके उसको हम अवयव कहेंगे, एक एक वाक्य लेके। तो पार्ट बाय पार्ट उसका हम परामर्श करेंगे नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। परामर्श करना है नहीं, उसके बारे में स्पष्टीकरण करना, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो काल का अवलंबन यानी कितने काल तक या कितने काल के भीतर उपशमान्य उठाया जाता है उसकी बात चलेंगे। कितने काल के भीतर उपशामना की जाती है ऐसा कहने पर अंतरकरण क्रिया संपन्न होने पर, अंतरकरण क्रिया संपन्न ने जो चारित्रमुख की 21 प्रकृतियां हैं वो क्रम से उनके जो निषेक पड़े थे उसमें बीच में अंतर किया जाता है, गैप किया जाता है, उसमें से परमाणु नीचे ऊपर यथा योग्य जो जिसका है वहाँ डाले जाते हैं। तो कहते अंतरक्रिया करण क्रिया संपन्न होने पर यानी ये अंतरकरण करने का कार्य अंतर्मूर्त तक चलेगा, वो कार्य समाप्त होने पर किन कर्मों का कौन सा करण कितने काल के द्वारा उपशमाया जाता है, ये कौन से करण के प्रकृति के उपशमाने की बात नहीं, कर्णों के उपशमाने की बात। इस प्रकार इस वचन द्वारा नपुसक वेद आदि प्रकृतियों से संबंध रखने वाले सभी कर्णों का उपशामना में लगने वाला काल विशेष पूछा गया है। संक्रमण और उदीर्णा कितने काल तक होते हैं? इस प्रकार इस सूत्र वचन द्वारा उन्हीं संक्रमण और उदीर्णा आदि कर्णों की काल सहित अनुपशांत अवस्था कितने काल तक रहती है यह पूछा गया है। यानी कितने काल तक उसके संक्रमण चलता रहे, जब वो रुक जाएगा, उपशम हो जाएगा तो सभी कर्णों का उपशम हो जाएगा। अब जब हम कहते उपशम श्रेणी में सबसे पहले नपुसक वेद की उपशमना पूरी हुई, तो उसकी उपशमना पूरी हुई उसके सभी कर्ण भी उपशांत हो गए, ऐसा उसका अर्थ होता है। उन कर्णों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त रहना अनुपशांत अवस्था है, यानी वो कर्ण होते रहना वो उसका अनुपशम है, अनुपशांत अवस्था है। और उन्हीं कर्णों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त नहीं रहना उपशांत अवस्था है, यह यहाँ विवक्षित है। अब ये बताएंगे क्या क्या होता है कर्णों का अनुपशांत और उपशांत, उसकी चर्चा तो अभी हम कल ही करेंगे क्योंकि ये बहुत विस्तार से और कंटिन्यूस में बड़ा पैराग्राफ है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो तेज।